शांति। सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद के बाबा ने हम बच्चों को अपना बना करके हमारे जीवन को सफल कर दिया। बाहर वाले जब भी कोई मिलते हैं तो कहेंगे धन्य हैं आप लोग, आपका जीवन सफल हो गया। और हम सब भी यही समझते हैं कि ईश्वर बाप का बनना अर्थात ही जीवन सफल होना, क्योंकि हमारा जीवन तो ऐसा ही चल रहा था, परंतु बाबा ने हम सबको अपना बना करके क्या किया, अपने काम में लगा दिया और जीवन को सफल बना दिया। अपना एक गीत है ना कि हम प्रभु को भा गए और प्रभु के काम आ गए। घर में कोई चीज ऐसी पड़ी होती है जो काम में नहीं आती है, और कोई अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर से आके कोई कहता है भाई ये कुर्सी आपके काम की नहीं है, आप तो यूज नहीं करते इसको, आपके काम की नहीं है तो आप हमें दे दो, हम इसको काम में लगा देते हैं, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, चलो सफल हो गए। तो वैसा ही हम लोगों की जो जीवन थी वो ऐसी पड़ी थी बिगर काम की, तो बाबा ने आके अपना बना करके सिर्फ हम उसको भाए नहीं पर उसके काम भी आए। बड़ी बात तो ये हमारे भाग्य की, और ऐसे काम में आए जो इतना काम में लगा दिया हमें अपने जैसा, जो एक मिनट का भी फुर्सत नहीं। तो अब ऐसी जीवन सफल बनाने के लिए बाबा ने कौन सी हमें युक्तियां बताई, कौन से राह के ऊपर चलाया, जिसके कारण सिर्फ हमारी जीवन सफल नहीं हुई परंतु हम बच्चे अनेक आत्माओं की जीवन सफल बनाने के लिए निमित्त बन गए। बाबा ने हम बच्चों को पहला महामंत्र यही आकर के दिया कि सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार। तो जब हमें ये निश्चय बैठ गया कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार कोई छीन नहीं सकता है, जन्मसिद्ध अधिकार के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, जन्मसिद्ध अधिकार में कोई बंटवारा नहीं होता है, इसीलिए बहुत निश्चिंत रीति से इस ईश्वरीय मार्ग पर ईश्वरीय गोद में हम बच्चों ने चलना चालू किया और पलना चालू किया। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि तुम्हें सफल बनना है, सफलता का महामंत्र है सफल करो सफल बनो, सफल करो सफलता पाओ। बाबा ने हमें सब कुछ सफल करना सिखाया, तन मन धन समय संकल्प श्वास सर्व ईश्वरीय प्राप्तियां। तो अभी हम देखते हैं कि एक एक चीज हम लोगों ने कैसे सफल किया, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, और सफल करके उसका रिएक्शन हमें क्या मिला, उसकी प्राप्ति हमें क्या मिली। सबसे पहले तो बाबा ने हमें अपना तन सफल करना सिखाया। वैसा ही हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, हम ईश्वर अर्थ ईश्वर के ऊपर तन मन धन अर्पण करते। पहला नंबर तन आता है, क्योंकि ये तन ही सब गड़बड़ करता है। इस तन का जो भान है, इस भान के कारण हमारा ताज तखत तिलक सब कुछ चला गया, देहाभिमान के कारण। तो बाबा ने पहले आकर के हमें इस तन, जिस तन के द्वारा विस्मृति में आने के कारण हमने अनेक अनेक आधा कल्प से पाप कर्म किए, उस तन को सफल करा करके ईश्वरीय कार्य में लगा करके उसके द्वारा पुण्य कर्म करना सिखा दिया। आपको मालूम होगा जब पैर में कांटा चुभता है तो कांटे को निकालने के लिए कांटे के नीचे तक जब तक आप सुई नहीं डालेंगे कांटा कभी निकलेगा नहीं, ऊपर से नहीं कांटा निकलता, उसको जरा गहरा डालना पड़ता। तो देह अभिमान रूपी कांटा जो हमारे अंदर था उसको निकालने के लिए बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान की गहराई में जाना सिखाया, देही अभिमानी की गहराई में जाना सिखाया, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करना सिखाया। अभी जब हमने ईश्वर अर्थ तन मन धन सब अर्पण कर दिया, हम बाबा के कार्य में अपने तन को लगाते हैं, बाबा के कार्य में तन को लगाना दो प्रकार का है। एक तो हम मुख के द्वारा अनेक आत्माओं को बाबा का परिचय देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, और उसके साथ साथ इस तन के द्वारा हम यज्ञ की सेवा भी करते हैं। उसमें भी हम अपने तन को सफल करते हैं। जितना जितना हमारा ये तन ईश्वरीय सेवा में घिसता है, जितना जितना ये हमारा तन ईश्वरीय सेवा में लगता है, चाहे स्थूल सेवा चाहे सूक्ष्म सेवा, उतना उतना हमारी आयु बढ़ती जाती। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे तुम राजयोगियों का ही यादगार दधीची ऋषि है। जिस दधीची ऋषि ने यज्ञ में अपनी हड्डी हड्डी दे दी, अभी सचमुच थोड़ी हड्डी किसी ने निकाल के दी, बाबा ने हम बच्चों को हमेशा ये बताया कि तुम बच्चे हमेशा तुम बच्चों को हड्डी सेवा करनी है। हड्डी सेवा करनी है माना तुम अपना सारा समय ऐसा मेहनत करो, हड्डी मेहनत करो, जिगरी मेहनत करो, जो तुम्हारा ये हड्डियां भी किसके काम में आ जावे, ईश्वरीय सेवा के काम में आ जावे, सफल हो जावे। इसीलिए बाबा ने हमें यज्ञ सेवा का बड़ा महत्व बताया। शुरू शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई और स्थापना के बाद जब हम पाकिस्तान से यहां माउंट आबू पर आए और जब बेगरी पाठ चालू हुआ, बेगरी पाठ के समय बाबा ने यज्ञ सेवा का महत्व एक एक बच्चे को पक्का कराया। क्योंकि जिस समय बेगरी पाठ चलता था तो पानी भी नीचे नीचे होता था पानी, और ऊपर चढ़ता नहीं था पहाड़ी पर, तो नीचे से पानी, पीने का पानी भी नीचे से भरते थे। भोजन पकाना है तो उसके लिए लकड़ी भी जाकर के जंगल में से लेके आते थे। तो बाबा खुद आगे चलता था, मामा आगे चलते थे, वो भी पानी भर के आते थे, वो भी लकड़ी लेके आते थे। तो जो बीमार होते थे वो बाबा को कहते थे, बाबा हमारे में तो ताकत नहीं, हमको इतना दमा है, हम अगर लकड़ी उठाएंगे तो मर जाएंगे, पानी उठाएंगे तो हम चलेंगे कैसा, हमारे को इतने जॉइंट्स पेन है, क्योंकि वहां ठंडी बहुत होने के कारण बीमार भी बहुत पड़े। तो बाबा कहता था, बच्चे देखो जो तंदुरुस्त है वो बड़ा घड़ा भर के उठाते हैं और आप एक गिलास भर के उठाते हो, दोनों को इक्वल मार्क्स। ये जो सेवा का पाठ है, हड्डी सेवा का पाठ, इसमें अपने को कभी भी मिस नहीं करना। आप ज्यादा नहीं उठा सकते हो, एक गिलास भर के तो ला सकते हो। वो कहेंगे एक गिलास क्या करेंगे लाके, हमको तो बहुत पानी लगता है, यहाँ एक गिलास से क्या होगा, 350 लोग रहते हैं। बाबा कहता है 350 लोगों की बात नहीं है, इसमें क्या फर्क पड़ेगा, सामने वाला पूछता है ना, एक गिलास मैंने लाया तो क्या फर्क पड़ेगा, पानी में फर्क नहीं पड़ेगा पर मेरे भाग्य में तो जरूर फर्क पड़ जाएगा। तो हमारा भाग्य जिस आधार पर जमा होता है, बाबा कहते थे देखो जो तंदुरुस्त है वो इतनी लकड़ियां तोड़ के लाते हैं, तुम एक दातन तोड़ के लाओ। परंतु अपने को कभी भी किसी भी सेवा में मिसिंग नहीं होनी चाहिए। सेवा को मिस करना अर्थात अपने ऊंचे भाग्य को मिस करना। इसीलिए सदैव हां जी का पाठ पक्का करो, और जितना जितना हम अपने तन को इसमें लगाते जाते हैं उतना उतना हमें अनेक आत्माओं की दुआएं मिलती। दुआएं लेने का सहज साधन है सेवा में आप तत्पर हो जाओ। वैसा भी हमेशा कहा जाता है ना, जो चूल्हे पर है सो दिल पर है। घर में जो बहू काम करेगी ना, खाना पकाएगी, सारा काम करेगी, उसको सब प्यार करेगी, ये तो बड़ी अच्छी है, ये तो बड़ी अच्छी, और जो बैठी रहेगी उसको कौन प्यार करेगा। तो उसी तरह से बाबा भी उन बच्चों से प्यार करता है जो हड्डी सेवा करते हैं, जो अपनी हड्डी हड्डी दधीची रुचि के मिसल इस यज्ञ में स्वाहा कर देते हैं। आप अगर अभी भी आप देखेंगे, आप लोगों के सामने तो दादियां हैं, अपनी दादियां जो इतनी सेवा करती हैं, हाँ नहीं तो बोलेंगे 93 वर्ष तो आराम करने का समय होता है, उस समय पर कौन मेहनत करेगा। परंतु इस समय इतनी जो बैठ करके सेवा करते हैं, इसका क्या कारण। अभी भी हम जानकी दादी को बोला, आप अभी क्यों, दूसरा थोड़ा ही टाइम है, दूसरा कोई क्लास करा ले। नहीं नहीं, मेरे को मेरे समय को सफल करना है, सबको फायदा होना चाहिए हमारा। तो ये जो दुआओं का खाता है, ये जब जिगरी प्यार होता है तभी हम क्या कर सकते हैं, अपने तन को हम कार्य में लगा सकते, तन को सफल कर सकते। आप वैसा भी देखेंगे ना, घर में हमारा जिसके साथ प्यार होता है उसके लिए हम कोई भी काम करने के लिए तैयार होते हैं, और जिसके साथ हमारा प्यार नहीं होगा हम समझेंगे हमारा भी काम वो करता रहे, और हमारा जिससे प्यार होगा उसको अरे रहने दे मैं करता हूं तुम्हारा भी काम मैं करूं। तो ये प्यार की निशानी है। तो वैसा ही हमारा जितना बाबा के साथ प्यार होगा उतना हमारा तन भी क्या है इसमें घिसता जाता, और जितना तन घिसता जाता है उतनी हमें कंचन काया मिलती है। तो बाबा कहता है यहाँ पर, आप बोलेंगे फिर बीमारियां क्यों होती है, बीमारियां होती है परंतु सूर्य से कांटा हो जाता है, ये पक्का समझ लो। हमारा कोई बहुत कड़ा हिसाब किताब होगा वो जितनी जितनी हम सेवा करते हैं वो कट होता जाता है, और कट होते होते क्या होता है, थोड़ा बहुत रह जाता है जो हमें निमित्त मात्र वो भोगना पड़ता है। और वो भोगना भी देखो बाबा ने हम बच्चों को बताया, उसको भोगना नहीं समझो, परंतु उस समय योगी कर्म योगी बन करके चलो, ये हिसाब किताब चुप तो हो रहा है। और जो बीमारी का सताव है वो क्या है, हमारी बुद्धि जितनी जितनी सेवा में लगती है, आप खुद ही देखो जिस समय आप बिजी हो गए ना तो बीमारी की तरफ ध्यान नहीं जाता है, आप फ्री बैठ जाओ तो बीमारी की तरफ ध्यान जाता। तो जो बीमारी का सताव है वो सेवा में बिजी रहने से आप ही क्या हो जाता है, कमती हो जाता है, उसका सताव नहीं होता है सहज ही। वो जो समझो कोई आज भी हम देखते हैं ब्राह्मण जो भी जाते हैं हॉस्पिटल में भी जाते हैं, वहां हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो कोई वो अपनी ट्रीटमेंट कराने के लिए सिर्फ नहीं जाते, जाएंगे तो वहां भी सेवा करके आते हैं। तो ये भी देखो कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो अपने तन को हम जितना जितना ईश्वरीय सेवा में बिजी करते जाते हैं। एक बार एक बहन का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और उसको बोलना भी नहीं आता था, उसकी इतनी एकदम वाचा बंद हो गई थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी, व्हीलचेयर पर उसको लेके आते थे। तो अव्यक्त बाबा से मिलने के लिए लेके आए तो बाबा ने कहा देखो बच्ची तुम क्या करो, मुरली पढ़ना चालू करो। वो बोला मेरे को बोलना नहीं आता है। बाबा ने कहा कोई हर्जा नहीं है, तुम अंदर से कोशिश करो, जोर जोर से पढ़ के किसको सुनाओ, तुम जितना जितना सेवा करेगी ना उतना उतना जल्दी ठीक होती जाए। तो ये तो हम खुद का भी अनुभव देखते हैं कि जितना हम सेवा में तत्पर रहते हैं, जितनी हमारे को अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है, दुआएं मिलती है, उतना उतना हमारा तन ठीक होता जाता है। तो अगर हमारे को बड़ी आयु चाहिए, सर्व की दुआएं चाहिए, अगर हमें तंदुरुस्त तन चाहिए, तो अपने तन को ईश्वरीय सेवा में अर्पण करने की जरूरत है, सफल करने की जरूरत। उसके बाद हम अपना मन ईश्वर अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं, सफल करते हैं। कैसा सफल होगा? नहीं तो हम हमेशा क्या करते थे, पहले उल्टे सुलटे संकल्प उठाते थे। अभी बाबा ने आके मन को काम दे दिया है, मन मना भव का। जब मन मना भव की स्थिति में हम रहते हैं, मन मना भव की स्थिति में रहना अर्थात ही मन को समर्पण करना, मन को सफल करना। क्योंकि मन का काम है संकल्प करना, तो पहले जो संकल्प करते थे वो निगेटिव संकल्प करते थे, अभी जो संकल्प करते हैं हम क्या करते, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन करते हैं, जिस चिंतन के द्वारा ही क्या होती है, हमारी सर्व चिंताएं छूट जाती, इधर ही हमको उसका रिटर्न मिलता है। क्योंकि बाबा जो है वो दाता है, वो किसी मनुष्य का रखता नहीं है। तो हमने मन को समर्पण किया तो बाबा ने हमें चिंताओं से मुक्त कर दिया, हमने मन को समर्पण किया तो मन का भटकना बंद हो गया। फायदा देखो किसको होता है, फायदा तो हमें ही होता है। हमने मन को समर्पण किया, हमारा मन निरोगी बन गया। नहीं तो सारा दिन कुछ ना कुछ, एक किसी ने कुछ बोला उसका इफेक्ट, उसने कुछ बोला जख्म के ऊपर जख्म होते रहते, सबका क्या करते थे, वही मन को लगा करके मन को रोगी बना दिया। परंतु बाबा से जैसा जैसा हमने अपना मन बाबा से लगाना सीख लिया, बाबा के अर्पण कर दिया, मन को सफल कर दिया, अर्थात ही बाबा की याद में हमने जब मन को लगा दिया तो उससे क्या हो गया, हमारा मन कहा जाता है ठरी बैठी ठिकाने, मन और बुद्धि का भटकना बंद हो गया और ठंडास आने लगी। देखो बाबा की याद में बैठो कितनी ठंडास आती है एकदम, जैसा एयर कंडीशन तो कुछ नहीं है उसमें, कितनी ठंडास है, कितना आनंद है उसका हम लोग अनुभव करते हैं। भटकना बंद हो जावे किसी व्यक्ति का तो अपने को समझेगा ना कि बहुत रिलीफ मिल गई मेरे को। मन का भटकना कितना थकावट करता है इसका हम सब ने अनुभव किया है। तो बाबा ने भटकने से हम बच्चों को क्या किया, बचा दिया। फिर उसके बाद हमने अपना धन जो है वो ईश्वर अर्पण किया, अर्थात ही सफल किया। कौन सा धन सफल किया हम? जो वेस्ट धन जाता था, जो फालतू धन जाता था। बाबा कभी भी बच्चों को ये नहीं कहता है कि बच्चे तुम खाओ नहीं, तुम बच्चों को संभालो नहीं, तुम अच्छा घर नहीं बनाओ। बाबा ने ऐसा कभी भी नहीं कहा। तुम्हारा जो वेस्ट जाने वाला धन है उसको क्या करो, ईश्वरीय कार्य में लगाओ। पहले हमें कैसी कैसी आदतें थी, कैसी फिजूल खर्ची थी, वो सारा हमने क्या किया, उसको सफल किया। आज एक एक अगर अपना चार्ट देखें तो वो क्या करते हैं, हम उसको सफल करते जाते हैं। वेस्टेज से छूट गए हम। और जब ही हमने अपना धन ईश्वर अर्पण किया, उसको सफल किया, तो बाबा ने हम बच्चों को आशीर्वाद दिया कि बच्चे तुम कभी भी भूख नहीं मरेगे, मेरी गारंटी है, जाओ। यहां तक तुम तो भूख नहीं मरेगे पर तुम्हारे बाल बच्चे भी भूख नहीं मरे। आपको याद है बाबा की वो मुरली, जब भगवान मेरी इतनी गारंटी लेने के लिए तैयार है और हमारे पास है क्या, ककपन तो है। जो बाबा के भंडारे में दिल से करता है उसका भंडारा सदैव भरपूर रहता। इसीलिए बाबा प्रवृत्ति में रहने वालों को कभी मिस नहीं करना इस पॉइंट को। बाबा हमेशा प्रवृत्ति में रहने वालों को पक्का पाठ कराता है कि तुम जब भी भोजन खाते हो तो ये बुद्धि में रखो कि हम शिव बाबा के भंडारे का ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। ये क्यों कहता है बाबा, हम ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, ऐसा क्यों कहता है? अगर आपको ये याद रहेगा कि हम शिव बाबा के भंडारे का ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, मन तो शुद्ध होगा ही परंतु कभी भी कर्तापन का भान नहीं आए। नहीं तो भान आता है ना, मेरे को कमाना पड़ता है, देखो मैं कितनी मेहनत करता हूँ, इसके लिए फिर कभी चिंताएं होती है, कभी अभिमान आता है, कभी अहंकार आता है, कभी निराशा आती है अगर नुकसान होता है तो। इसीलिए बाबा ने कहा देखो राजा जनक के मिसल रहो। राजा जनक जैसा राजा ही में रहा परंतु उससे न्यारा रहा, ट्रस्टी होकर के रहा। तो बाबा ने हमें धन को सफल करना अर्थात ट्रस्टी बनना सिखाया कि ये तुम्हारा नहीं है, ये मैंने तुमको दिया है। उस दिन भी बाबा की मुरली पढ़ रहे थे, बाबा ने कहा कि देखो बाप तुमको खिलाता है, बाप तुमको देता है, दाता बाप। तो जब बाबा हमको देता है तो हम सचमुच बाबा का समझ के चलते हैं। मुख से तो हम बोलते हैं ये सब कुछ बाबा का है, सब कुछ बाबा का है, परंतु सचमुच अंदर से हम अपने को चेक करें कि हम सब कुछ बाबा का समझ करके चल रहे हैं। अगर बाबा का सब कुछ है, मुझे सफल करना है, तो बाबा की श्रीमत के बगैर हम उसको यूज नहीं कर सकते। और सफल करना अर्थात जब आवश्यकता है, जहां पर आवश्यकता है वहां उसको लगाना, मना सफल कर, सफल उसको कहेंगे। जब जरूरत है उस समय अगर हमने नहीं किया, समझो कोई भी कार्य होता है, अभी समझो हम लोग देखते हैं मनमोहिनी वन बनता है, अगर इस समय हम लोगों ने कार्य में नहीं लगाया, दूसरे समय पर लगाया, हर एक समय का अपना अपना होता है। जब भी जिसको लगाना है, बाबा ऐसा नहीं करते हैं कहता है तुम खाली हो जाओ, नहीं, बाबा कहता है बैलेंस रख करके चलो, लौकिक अलौकिक का बैलेंस रख करके सब कुछ संभालते हुए परंतु न्यारे होकर के चलो। तो जितना जितना हम इस कार्य में लगाते जाते हैं उतना उतना बाबा हमारा भंडारा क्या करता है, भरपूर करता जाता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग, क्योंकि हमारे को टेंशन खलास हो जाता है इसका, अभी कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, अरे हुआ तो उसको हुआ, नफा हुआ तो भी उसका भंडारा, नुकसान हुआ तो भी उसका भंडारा। और इतना वंडर होता है बाबा कहाँ कहाँ से देखो कैसे कार्य पूरे कर देते। सिर्फ ये हम लोगों का अनुभव नहीं है, परंतु आप लोग भी अगर साक्षी होकर के देखेंगे, आपका जब भी कोई ऐसा कार्य होगा, आपके पास कुछ नहीं होगा, परंतु उस समय आपको कोई ना कोई ला करके दे देगा, अरे इसने मेरे ऊपर बहुत उपकार किए। वो व्यक्ति के उपकार नहीं है ये, उसके उपकार, वो तो निराकार है ना, वो कैसा करेगा। देखो हम कोई भी काम करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं, हाथ के द्वारा करते हैं ना। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मेरा राइट हैंड बनना है, तुम मेरे हैंड्स हो, इसीलिए आप देखेंगे ब्रह्मा को इतनी भुजाएं बताते हैं, सहस्त्र भुजाएं, हजार भुजाएं वाला ब्रह्मा। तो हम बाबा के राइट हैंड है, बाबा हमारे द्वारा सब कार्य कराता है, हाथ के बिगर कैसा करेगा। तो वैसा ही कोई भी कार्य होगा तो बाबा किसी न किसी बच्चे को निमित्त बना के टाइम के ऊपर मदद कर देता है, परंतु क्या करते हैं, सामने वाले छोड़ते नहीं है काम को, नहीं मेरे को ही करना है ना, मेरे को ही सोचना है, सोच सोच के अपनी शक्ति को नष्ट करते हैं। आप बाबा के ऊपर छोड़ दो, बाबा देखो कैसा कार्य पूरा कर देता है, आप ही पूरा कर, आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं। अभी यज्ञ के इतने बड़े बड़े कार्यक्रम चलते हैं, वो तो बाबा को फिक्र करनी। हम लोग साकार बाबा से पूछते थे, बाबा ये ऐसा इतना बड़ा कार्य, अभी ये कैसा होगा, ये मकान कैसा बनेगा। बाबा बोलता था तुम क्यों फिक्र करते हो, सावल शाह की हुंडी जो है ना वो गोरा शाह पे उतार देगा, ब्रह्मा है सावरा और शिव बाबा है गोरा, वो आप ही उतार देगा। और सचमुच ऐसा उतारता था वो हुंडी, जो इसमें निश्चय बहुत चाहिए। अगर हमारा निश्चय है, बाबा ने ब्रह्मा की कोई कमती परीक्षाएं नहीं ली है, शिव बाबा ने कितनी परीक्षाएं लिया, आप लोगों ने किसने सुना होगा, किसने नहीं भी सुना होगा, बेगरी पार्ट में जब कुछ भी नहीं होता था, ठन ठन होता था द्रौपदी के देगरे में, और उस समय 11 बजे 12 बजे खाने का बेल बजने का है, और 11 बजे मनी ऑर्डर आता था, बिगर नाम वाला मनी ऑर्डर कौन भेजता। ये तो बाबा बच्चों को करके बताता है, कैसा कहते हैं ना, सब कुछ करके फिर अपना आप छुपा देता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, किसने ये सब खेल बनाया, कहता है मैंने नहीं बनाया। अरे तूने नहीं बनाया तो किसने बनाया, रचता कौन है, रचता मैं हूं पर खेल मैंने नहीं बनाया। अच्छा इस खेल का डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर मैं हूं पर मैंने नहीं बनाया। अभी कमाल है उसकी, वो तो ऐसा बहुरूपी है, वो बोलेगा मैंने कुछ किया नहीं, करेगा भी सब कुछ, बोलेगा मैंने कुछ भी नहीं किया। परंतु हमारा अगर निश्चय है उसके ऊपर, और हमारे को ये पक्का है कि हमारा कुछ भी, हमारी तरफ से कोई भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, हमारा सब कुछ सफल होना चाहिए, तो बाबा जरूर सफल करा दे। फिर अच्छा बाबा ने अभी हम बच्चों को बताया अपने समय को सफल करो, तो हम अपने समय को कितना सफल करते। मेरा समय हमेशा सफल होता है, समय को सफल करना अर्थात ही हमारा समय ईश्वरीय याद में जावे, हमारा जो समय है वो ईश्वरीय सेवा में जावे तो सफल हुआ। परंतु अगर हमारा खाने पीने में और सोने में समय गया, सोने में भी बहुत टाइम वेस्ट होता है, कोई 12-12 घंटा सोए रहते हैं। अरे कैसा रहा आपका चाट आज का? मेरा चाट बहुत अच्छा था। क्यों अच्छा था? फालतू संकल्प आने की मार्जिन ही नहीं था। हम सवेरे सोया रात को उठा, फालतू संकल्प कभी आएंगे बताओ? तो वो समय किस में गया बताओ? वो समय हमारा सफल हुआ या वेस्ट हुआ? वेस्ट हुआ ना, हमने समय को कहां सफल किया। तो हमें समय को देखो, दो चीजें अपने हाथ में है, एक है खाना और दूसरा है सोना। आप जितना चाहिए उतना सोने को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना खाना बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते। इसीलिए ईश्वरीय नियम है सात्विक भोजन खाना चाहिए, पर कितना खाना चाहिए उसका संयम जरूर होना चाहिए। अगर संयम नहीं है, बिगर संयम खाते हैं तो वो आलस पैदा करता है, और वो जो आलस है, आलस हमारे समय को सफल नहीं होने देता। योग में भी बैठे होगे ना, ओम शांति, तो समय सफल हुआ? तो हमें ये देखना है। अमृत वेले भी अच्छा, नेमिनाथ बन के तो हम उठ गए, परंतु उस समय हमारा समय सफल हुआ? हम कहेंगे हम गए ना भट्टी में, मेरा बहुत समय सफल हुआ, परंतु सचमुच हम भट्टी में आने के बाद चात्रक बन करके अपने पास इतने ज्ञान रत्नों का खजाना जमा किया, इतने हम भरपूर हुए, शक्तियों से भरपूर हुए, या हमारा टाइम वेस्ट गया? समय सफल करने वाले जो है वो कभी भी परचिंतन नहीं करते हैं। समय वेस्ट होने का सबसे बड़ी बात है परचिंतन, परदर्शन और परचिंतन। जो परचिंतन और परदर्शन करता है उसका समय सदैव वेस्ट, उसकी शक्तियां भी वेस्ट होती है, उसका समय भी वेस्ट जाता है, उसके श्वास भी वेस्ट जाते हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं बने। तभी बाबा ने हम बच्चों को बताया, बच्चे तुम्हें समय को सफल करना है ना, सी फादर फॉलो फादर। और किसी को भी तुमको देखना नहीं है, बाबा को देखो, बाबा को फॉलो करते चलो। बाबा ने अपना समय किस में लगाया? मम्मा ने अपना समय किस में लगाया? हमारी दादियां अपना समय किस में लगा दो? मम्मा सारी सारी रात ऊपर जाकर के टेरेस पर बैठ करके योग करती, कभी भी देखो मम्मा बैठी होवे तपस्या कर रही। इसीलिए मम्मा कितना जल्दी अव्यक्त हो गई। तो समय को सफल किया ना, तो हमारा थोड़ा भी समय वेस्ट न जावे। अगर थोड़ी फालतू बातों में अगर इंटरेस्ट है, परचिंतन सुनने में अगर हमारे को इंटरेस्ट है, इसमें हमारी बहुत जो एनर्जी है ना वो नष्ट होती। परचिंतन करो या परचिंतन सुनो, एक जैसे नुकसान है। कोई कहते हैं हम कभी करते नहीं है परचिंतन बैन, पर कोई आकर के हमको सुनाता है, अरे हमको क्या कचरे का डब्बा समझा है क्या उन्होंने? यही हुआ ना, कहां से भी कचरा उठाया आके डाला हमारे में, कहां से भी कचरा उठाया, ये कोई बात होती है? हमारे को सुनने का इंटरेस्ट है, इसीलिए तो आके सुनाते हैं। आज देखो बाबा का ज्ञान कितना ऊंचा ज्ञान है, कितना श्रेष्ठ ज्ञान है, पर जिसको इंटरेस्ट नहीं, आपकी ताकत है उसको सुनाने की? आपको बोलेंगे देखो आपको इसका जरूर कल्याण करना है, आप कहेंगे नहीं उसको इंटरेस्ट नहीं, मैं नहीं सुनाऊंगा। तो जब सामने वाले को आप जबरदस्ती अच्छी चीज नहीं दे सकते हो, तो खराब चीज हमको जबरदस्ती कैसा कोई दे सकता? तो ये हमें चेक करना है, सिर्फ ये बात सुननी नहीं है, हमको चेक करना है। अगर हमारे अंदर ये आदत है तो हमको यहाँ छोड़ के जाना, कि हमको कभी भी फालतू बातें ना सुननी है, ना फालतू बातें करनी है, ना फालतू देखना है। अरे जहां जाना ही नहीं है उसका रास्ता काहे को पूछना? हमारा लक्ष्य ही नहीं है, हमारा लक्ष्य तो समय को सफल करने का है। तो मेरा समय सारा दिन कितना सफल होता है, समय सफल होना माना मेरी कमाई होना, और समय अगर वेस्ट हो गया तो मेरी कमाई तो गई, क्योंकि जीवन की घड़ियां बाकी कितनी रही। कहते हैं ना, जो समय को नष्ट करता है एक दिन समय उसको नष्ट कर डालता है। और कोई समय के ऊपर बहुत हवाला रखते हैं हमारे भाई बहन, कहेंगे समय आएगा ना, कोई भी बात हो समय आएगा ना तो बन जाएंगे हम, समय आएगा तो कर लेंगे। अरे क्या समय हमारा शिक्षक है क्या, समय कराएगा क्या? नहीं, मुझे करना है। समय के पहले करेंगे तभी हमको मार्क्स मिलेंगे, समय के बाद करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। वो तो समय को मार्क्स हो गए, हमारे को थोड़ी मार्क्स। तो इसलिए हमारे को विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा समय कभी भी नष्ट नहीं होना चाहिए, हमको अपने समय को सदैव सफल करते जाना। दूसरी बात, हम लोग देखते हैं हमारे श्वास कहाँ तक सफल होते हैं, क्योंकि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो सब बातों की हमारा सब कुछ सफल होना चाहिए। बाबा कहता है, बच्चे श्वासो श्वास मुझे याद करो। जो श्वासो श्वास बाबा को याद करते हैं उनके श्वास सफल होते हैं, अर्थात अंत के समय वो बड़ा आराम से श्वास छोड़े। कौन सा श्वास अंतिम होगा ये किसी को मालूम? कोई भी श्वास अंतिम हो सकता। तो इतने तो हम अपने श्वासों को ईश्वरीय याद में रखे, जो अंत के समय हम आराम से श्वास छोड़े, गुटखा नहीं खाना पड़े। तकलीफ, बाबा कहता है, बच्चे तुम बच्चों को ये जो पांच तत्व है इनकी सेवा करनी, क्योंकि इनकी तुम अभी सेवा कैसे करेंगे? तुम इनको जितना जितना तुम ईश्वरीय याद में रहते हो, तुम्हारे ये जो शांति के वाइब्रेशन है ये चारों तरफ फैलते हैं। तो जब तुम इन तत्वों की सेवा शांति के वाइब्रेशन देकर के करते हो तो अंत के समय ये तत्व तुम्हें मदद करेंगे। अंत के समय पर ये तत्व तुमको मदद करेंगे, तुम्हारे को आग जलाएगी नहीं, तुमको धरनी अपने पेट में नहीं दबाएगी, तुम्हारे को बाढ़ बहा के नहीं ले जाएगी। क्योंकि हमारा गायन बिल्ली के पुंगरों का है ना, बिल्ली के पुंगरों का बताते हैं ना, वो मटके सब तैयार हो गए, जल गए, परंतु वो बिल्ली के पुंगरे जीते रहे। वो हम ही तो बाबा के बच्चे, दूसरे कौन है? तो क्या हम अपना समय इतना सफल करते हैं, एक सेकंड भी हम वेस्ट नहीं करें बाबा की याद में रहे, जो ये जो पांच तत्व इनको शांति का दान मिलता रहे। और लास्ट में देखो हम लोगों को क्या करने का है, मनसा सेवा करनी है। मनसा सेवा के लिए हमारे पास शक्ति बहुत जमा चाहिए, मनसा सेवा के लिए हमारे अंदर बहुत एकाग्रता चाहिए। तो जितना जितना हम अपने संकल्पों को सफल करते हैं उतना उतना क्या होता है, हमारे अंदर निर्भय शुभ संकल्प पैदा करता है। श्रेय समय को सफल वही कर सकता है जो सबका शुभ चिंतक बन करके चलता है, नहीं तो समय सफल नहीं हो सकता। तो जितना जितना हम बाबा की याद में रहते हैं अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाते जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। हम लोगों ने तो ये पूरा सबने अनुभव किया हुआ है, पहले हम लोगों ने यही सोचा है ना, मैं पापी हूँ, कपटी हूँ, नीच हूँ, भक्ति मार्ग में यही सोचते आए तो पापी बनते आए, कपटी बनते आए। परंतु अभी बाबा ने जो हम बच्चों को बताया, तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुम सर्व का आधार और उद्धार मुहूर्त हो, तो जैसे जैसे हम ये पॉजिटिव संकल्प करते हैं वो क्या होता है, हमारी मूर्ति के अंदर उतरता जाता है। जितना जितना हम अपने संकल्पों को सफल करते हैं उतना उतना हमारे अंदर परखने की शक्ति आती है, उतना उतना हमारे में निर्णय करने की शक्ति आती है, जिसके आधार पर ही क्या होता है, हम कोई भी विघ्न आने वाला है, कोई भी परिस्थिति आने वाली है, उसको पहले से परख के उसका निर्णय करके उस पर विजय प्राप्त कर सकते। जैसा देखो साइंस में आज ये ताकत है ना, बरसात आने वाली होगी पहले से ब्रॉडकास्ट करेगी। तो अगर साइंस में बाबा कहता है इतनी ताकत है, तो तुम साइलेंस वालों में क्यों नहीं ताकत है, तुम क्यों नहीं समझ सकते हैं कि क्या विघ्न आने वाला? तो उसके लिए जो एकाग्रता चाहिए बुद्धि की, वो हम संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के बाद ही हमारे अंदर एकाग्रता आती। और बाबा ने हमेशा हम बच्चों को ये बताया है कि तुम जो निगेटिव संकल्प करते हो ना, पता नहीं सफलता होगी या नहीं होगी, ये पता नहीं तुमने बोला तो पर्दा सफलता के बीच में और तुम्हारे बीच में निगेटिव का पर्दा आ जाता है, सफलता ढक जाती। पता नहीं, हमको पता नहीं तो किसको पता है, ये तो बताओ। जबकि बाबा ने हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाया, त्रिनेत्री बनाया है, तो हम नहीं जानते तो कौन जानता। आप त्रिकालदर्शी बन के देखो ना, इस कर्म का क्या फल है, इसकी क्या रिजल्ट है, ये क्यों नहीं सफलता मिल सकती। तो कभी भी पता नहीं बोलो नहीं, आप निश्चय से कोई भी कार्य करो, देखो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और जब आपको सफलता मिलेगी, खुद के लिए सफलता मिलेगी, तभी आप क्या करेंगे, अन्य आत्माओं की जब सेवा करेंगे या औरों के संपर्क में आएंगे, उसमें भी आप सफल हो जाएंगे। पहले खुद का सब कुछ सफल करो, फिर औरों को सफलता दिलाने के लिए तुम बच्चे निमित्त बनो। और औरों के संपर्क में जब आते हैं, इसमें भी हमें सफलता चाहिए। प्रवृत्ति में रहो या सेवा स्थान पर रहो, अनेकों के कनेक्शन में आना पड़ता है। तो उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को दो बातें बताई। एक तो संस्कारों का मिलन जो है वो तुम करते रहो। संस्कारों का जैसा जैसा तुम मिलन करेंगे और जीवन में संतुष्टता का गुण धारण करेंगे, तो तुम्हें सदैव सफलता मिलेगी। क्योंकि हमेशा आप देखेंगे श्री कृष्ण के साथ रास बताते हैं। तो बाबा कहता है तुम रास से रास मिलाओ, रास से रास मिलाओ, मना क्या करो, संस्कारों का मिलन करो, टकराव नहीं करो। अगर टकराव करेंगे तो सिर्फ तुम्हारा ही फूटने वाला है। मम्मा हमेशा इसके ऊपर मिसाल देती थी। मम्मा कहती थी देखो एक घड़ा है और एक मटका है, मटका जो है वो मिट्टी का है और घड़ा जो है वो पीतल का है। अगर मटका जाकर के घड़े से लगता है तो क्या टूटेगा, मटका टूटेगा। और अगर घड़ा जो है वो अगर मटके से लगता है तो क्या टूटेगा, घड़ा ही टूटेगा ना। अगर पीतल वाला मिट्टी के साथ लगे तो भी वो मिट्टी वाला टूटेगा, अगर मिट्टी वाला जाके पीतल के साथ टकरावे तो भी मिट्टी वाला टूटेगा। नुकसान किसको है, मिट्टी वाले को ही नुकसान है, तो मेरे को ही नुकसान होने वाला है। कोई मेरे साथ टकरावे या मैं किसी के साथ टकराऊं, नुकसान उसको नहीं है, मुझे। इसीलिए मुझे क्या करना है, मुझे मेरा सिर बचा करके चलना है, मुझे मेरा सिर बचा के चलना, माना मुझे झुका के चलना है। इसे तो सिर झुकाएंगे तो क्या होता है, टकरना, टकरने से बच जाते हैं। अभी सामने दीवार है, मैं देख रही हूँ दीवार है, दीवार का काम है दूर होना। अरे दीवार कैसे दूर होगी, वो तो है ही दीवार, पर मेरे को क्या करना है, वहां से बच करके जाना है। तो उसी प्रकार अगर किसी के संस्कार हमारे साथ टकरने के लिए आते, कहते हम नहीं टकराते उससे, वो ही मेरे साथ टकरने को आता है। अरे वो टकरने को आता है तो जरा साइड बदली कर डालो। आप गाड़ी तो चलाते हो ना, आपने किसी को ठोकते हो, पर सामने वाला ठोकने को आता है तो क्या करते हो, नहीं मैं इधर से ही चलूंगा, भले ठोके तो ठोके तो खाओ मारो। तो ये जीवन में भी तो यही है ना, हम जीवन रूपी गाड़ी को चला रहे हैं। अगर सामने वाला हमारे से टकरने के लिए आता है तो हमारा काम क्या है, साइड करना, क्योंकि नुकसान मेरा ही होने वाला है। तो तभी बाबा ने हम बच्चों को मोल्ड होना सिखाया, बाबा ने हम बच्चों को झुकना सिखाया, बाबा ने हम बच्चों को परिवर्तन होना सिखाया। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होने वाला। जब तक हम परिवर्तित नहीं होंगे तो विश्व का परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर हमारे संबंधी है, हम साथ में रहते हैं, मित्र संबंधी, अगर वो हमारे से संतुष्ट नहीं होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वो अज्ञानी है। अरे अज्ञानी तो है तो हमारे ही भाई बहन, वो अज्ञानी है, पर मैं ज्ञानी हूँ। अज्ञानी और ज्ञानी में क्या अंतर, उनको आप अज्ञानी कहेंगे, खुद को ज्ञानी कहेंगे, उनमें और हमारे में क्या अंतर है ये बता। यही बड़ा महान अंतर है ना। अज्ञानी माना क्या करते हैं, कर्म करके पछताते हैं, और ज्ञानी जो है वो कर्म करने के पहले सोचते हैं, इसको ज्ञानी कहा जाता। तो उन लोगों को भी सेटिस्फाई करना, वो किस आधार पर कर सकते हैं, आप उनका कल्याण किस आधार पर कर सकते हैं, आपको कैसे सफलता आएगी प्रवृत्ति में रहते हुए, अपने कर्मों के द्वारा आप उनको चेंज कर सकते। सबसे बड़ी सेवा है गुणों की सेवा। आप योग का तो दान दे सकते हैं, मनसा से दान देते हैं ना हम योग का, ज्ञान का मुख से दान दे सकते हैं, पर गुणों का आप दान नहीं दे सकते, गुण आपको करके बताना पड़ता है। आज हम आपको बोलेंगे आप सहनशील रहो, पर हमारे में सहनशीलता नहीं होगी, हमारे अंदर बोलने की वो पावर ही नहीं आ सकती। पहले हमें वो गुण धारण करना पड़ेगा सहनशीलता का, तभी हमें देख करके क्या करेंगे, दूसरे धारण करेंगे। तो तभी बाबा कहता है बच्चे औरों का कल्याण करने के लिए हमेशा ये ख्याल में रखो कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख करके और करने वाले हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें खुद के कर्मों के ऊपर अटेंशन देना है, खुद के विचारों के ऊपर अटेंशन देना है, खुद की वाणी के ऊपर अटेंशन देना है। ज्ञानी और अज्ञानी का ये बड़ा महान अंतर है, जो ज्ञानी है उनका बोल और कर्म दोनों एक जैसा होता है। तो ये हमें सदैव चेक करते रहना है कि हमारा बोल और कर्म एक जैसा है या डिफरेंट है। डिफरेंट है तो उसको निकालने की हमें क्या करनी है, कोशिश करनी। तो जब तक ये लगन नहीं होगी हमको परफेक्ट बनने की, तब तक हम कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते। तो औरों के साथ एडजस्ट होकर के चलना, औरों के साथ मिलकर के चलना, मिलकर के वही चल सकता है जो सरल स्वभाव है। सरल स्वभाव वाले हमेशा सफलता को प्राप्त करते हैं। और सरल स्वभाव जो है, सरल स्वभाव तभी बनता है जब आप ज्ञान की महीनता में जाएंगे। कोई भी आप देखेंगे महीन चीज होती है, वो आप किसी में भी डालो मिक्स हो जाएगी, मोटी चीज थोड़ी मिक्स होती है। तो उसी प्रकार हम जितना जितना ज्ञान की महीनता में जाते हैं, जितना जितना विचार सागर मंथन करते हैं, उसको अपने जीवन में अपनाते हैं, उतना उतना हमारा जो नेचर है वो बाप समान मिलनसार बनता जाता है। और ये जो मिलनसार नेचर है, यही हमें स्व में भी सफलता लाता है और साथ साथ में सेवा में भी सफलता लाता है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए हमें सिर्फ सुनना नहीं है कोई भी बाबा की वाणियां या ज्ञान के क्लासेस, उसको हमें सोचना है, सोच करके उसको प्रैक्टिकल में लाने का पुरुषार्थ करना है, और फिर और क्या करना है, दूसरों को देना है। और उसी प्रकार बाबा ने जो शक्तियां दी है, शक्तियों को भी सफल करना है, ईश्वरीय प्राप्तियों को भी सफल करना है। कोई कोई बहुत खुश होते हैं, मेरे को ना बाबा ने बहुत दिया है। अरे दिया है तो औरों को बांटो, क्योंकि ये ऐसा अविनाशी धन है, सिर्फ ज्ञान धन नहीं परंतु शक्तियां गुण ये ऐसा धन है जो क्या कर सकते हैं, हम औरों को देने से ये बढ़ता है। जितना जितना हम औरों को देते हैं उतना उतना ये सफल होता है। आप कोई भी चीज होने दो, कोई इंस्ट्रूमेंट होने दो, ये माइक ही है, आप दो चार पांच बरस ऐसा ही रख दो, बेकार हो जाएगा। आपको यूज करना चाहिए। जब तक हम चीज यूज नहीं करते वो लूज हो जाती है। तो उसी प्रकार अगर हम शक्तियों को, गुणों को खुद यूज नहीं करेंगे, औरों को देंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, कलश हो जाएगा। तो ईश्वरीय प्राप्तियां हमारे ऊपर बहुत बड़ा ये एक ऋण है, परमात्म ऋण। जैसा दूसरे ऋण गाए जाते हैं ना, मातृ ऋण है, धरणी का ऋण कहते हैं, पितृ ऋण कहते हैं, पर परमात्म ऋण तो कितना बड़ा ऋण है हम संगम युग के ऊपर लेते। जैसा संगम युग ये ईश्वरीय पालना का युग है, वैसा ही संगम युग ये ईश्वरीय पालना का रिटर्न करने का युग। हम जो बाबा की पालनाएं लेते हैं उसको हमें रिटर्न करना है, अर्थात उसको जीवन में धारण करके हमें अन्य आत्माओं को देना है, जो उससे उन्हें भी फायदा होवे और वो भी बाप का बन करके चले। तो जब हम इतना ध्यान देते हैं इन बातों के ऊपर, तभी क्या होते हैं, हमारा जीवन सदैव सफल होता है। और सफलता की निशानी है संतुष्टता। अगर सफल होगा तो हमको सेटिस्फेक्शन होता है कि ठीक है, बाबा ने जो बोला वो हमने क्या किया, प्रैक्टिकल में किया। कम से कम इतना तो जरूर होना चाहिए, शरीर छोड़ने के समय हमें ये नहीं लगे अरे बाबा ने इतना मेरे पर मेहनत किया पर हमने तो कुछ बाबा को नहीं दिया। नहीं, इतनी तो हम कमाई करें जो अंत के समय हमारे को एक हम बहुत शांति से और बड़े प्रेम से हम अपना अंतिम श्वास लेवे, संतुष्टता से अंतिम श्वास लेवे कि हम जीवन में, ईश्वरीय जीवन में सफल हो गए। इसलिए बाबा कहता देखो, दुनिया वाले अंत में तो रोएंगे, परंतु अगर जो बाबा के कहने के ऊपर नहीं चलते, बाबा के श्रीमत के ऊपर नहीं चलते, उनको खून के आंसू आएंगे, क्योंकि उनको तो मालूम है ना बाबा ने इतनी मेहनत किया है। तो बाबा की मेहनत का हमको रिटर्न देना है, हम ही तो सफलता प्राप्त करेंगे, दूसरे कौन करेंगे। हरेक सेवा का अपना अपना महत्व है, हरेक समय का अपना अपना महत्व है। बाबा ने स्थूल सेवाओं का कितना समझाया। बाबा कहता था वहां यज्ञ में शुरू शुरू में छेना थपते थे ना, छेना समझते हो, गोबर, गायें थी अपने पास तो छेना थपते थे, तो किसी को ऐसा लगे अरे मैं तो छेना थपता हूँ ये क्या है। बाबा कहता था देखो बच्चे, तुम अगर समझो छेना थप रहे हैं गोबर का, ये बना रहे गोले बना रहे जलाने के लिए, और कोई आता है तुम्हारी स्थिति अच्छी है कोई भी आएगा तो उसको तुम्हारे में से साक्षात्कार होगा देवी का, तुम बहुत अच्छा भाषण कर रहे क्लास करा रहे पर तुम्हारी स्थिति का ठिकाना नहीं, उसको कुछ भी अनुभव नहीं हो। तो कर्म भले हल्का होवे पर स्थिति ऊंची होनी चाहिए। इसी की तो यादगार है ना आज देवताओं की, उनके हर कर्म की पूजा क्यों होती है, उनके हर कर्म की पूजा इसीलिए होती है क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में हर कर्म ईश्वरीय याद में रह के किया, इसीलिए तो कभी उनको भोग लगता है उसकी पूजा होती है, कभी विश्राम करते हैं उसकी पूजा होती है, कभी उनका श्रृंगार होता है उसकी पूजा होती है। तो ये हम लोगों का ही यादगार है ना, इन सब बातों को जब हम अंदर ही अंदर दोहराते हैं तो खुशी भी मिलती है हमें, और हम समझते हैं ये हमारा ही यादगार है, हमें यहाँ प्रैक्टिकल में करना है। तो बाबा ने स्मृति के द्वारा हम बच्चों के अंदर क्या किया, वो समृद्धि भर दिया, शक्ति भर दिया, अपना सब कुछ सफल करने की शक्ति भर दिया और औरों को सफल कराने की शक्ति भर दिया। एक बार एक बहन ने बाबा से पूछा, बाबा देखो हम तो समर्पण हो गए, हम लोगों के पास अभी आजकल कुमारियां नौकरी करती हैं, हम लोगों के जमाने में तो कोई नौकरी वोकरी नहीं करते थे, थोड़ा फिर भी आगे चले गए थे। पहले जमाने में जब दादियां आई तभी तो माताएं घर के बाहर नहीं निकलती थी, हम लोग जाते थे स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे पर नौकरी टोकरी कोई नहीं करता था। तो बाबा से पूछा, बाबा हम लोगों के पास तो कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, हम तो खाली हाथ आए बाबा के पास। बाबा बोलता है तुम अपने धन को सफल करो, धन को लगाओ, हमारे पास कहाँ धन है, मतलब हमारा वो सब्जेक्ट वीक हो गया ना। बाबा ने कहा नहीं ऐसा नहीं समझो, आज समझो तुमने किसी से 1000 रुपया कराया, उसमें से तुम निमित्त बने ना, उसको समझा के उसका सफल करने में निमित्त बने, ईश्वरीय कार्य में लगाने के निमित्त बने, उसका कमीशन तुमको मिले, तुम्हारा कमीशन चालू है, मरने तक तुम्हारा कमीशन चालू रहेगा। वो तो एक बार ही देखे पूरा कर देंगे पर तुम्हारा कमीशन तो चलता ही रहेगा। तो बाबा ने हम बच्चों को कर्मों की बड़ी गहन गति समझाई शुरू शुरू में। अभी तो आप बाबा के इतने बच्चे हैं, देखते हैं बाबा का परिवार कितना बढ़ता जाता है। जब हम लोग आए थे तभी कोई नहीं था, हम लोग सब काम करते थे हाथ से बैठ कर, ये अपना ओम शांति भवन बनाना उस समय पर आप थे विनोद भाई, जब ये पत्थर उठाए हम लोगों ने बैठ करके, हमारी दादी भी पत्थर उठाती थी, सब उठाते थे हम लोग पत्थर उठा करके, क्योंकि पहाड़ी तोड़ करके ये किया ना सारा। तो उस समय पर तो कोई, जब कॉन्फ्रेंस वगैरह चालू हुई तो कोई सेवाएं करने वाले थोड़े ही थे, हम आके तीन तीन चार चार मास रहते थे, और फिर ज्यादा नहीं रहेंगे तो दो दो मास तो जरूर रहते थे, फिर बैठ करके कोई भी आएगा तो उनको भोजन परोस के देंगे, बैठ करके यही धंधा करते थे, कड़छियां सारा दिन हिलाते रहते थे जो भी आता था, क्योंकि कौन करेगा नहीं तो, बहुत थोड़े लोग थे आने वाले, ऐसे मेहमान वगैरह थे, बाकी सेवा करने वाले बहुत थोड़े थे। तो एक बारी मैं ऐसा ही अव्यक्त बाबा से मिल रही थी, पहले तो बाबा पर्सनल मिलते थे ना एक एक से, बाबा शाम को 6 बजे आएगा तो दूसरे दिन सवेरे 6 बजे जाता था अव्यक्त, 12 घंटा बैठा रहता था, एक एक से बाबा पर्सनल बात करता था। तो बाबा देखो सेवा का कितना महत्व बताते हैं, तो हमारे को बहुत खुशी होती थी, हम हमेशा ये सेवा करते थे, भोजन खिलाने की सेवा सबसे बड़ा है अन्नदान, तो हम ये ड्यूटी हमेशा उठाते थे और बैठ के सेवा करते थे यज्ञ। तो बाबा ने हमारे से पूछा, अव्यक्त बाबा ने, आपको ये सेवा क्यों मिली, अभी हमको तो कुछ मालूम नहीं सेवा क्यों मिली है, सेवा सेवा है कोई तो करेगा ना कोई तो करने वाला होगा ना सामने, तो हमने कहा नहीं मालूम नहीं क्यों मिली। बाबा ने कहा देखो जिनको विश्व महाराजन बनना है उनके साथ सारी विश्व की आत्माओं का कनेक्शन होना चाहिए, वो कैसा होगा, अभी आपके पास तो सब आते हैं थाली लेकर, समझा? देखो कितना है, कितना सीधी बात है, कितनी छोटी सी बात है, पर बाबा ने कितना महत्व बताया इस सेवा। बोला नहीं तो कैसा कनेक्शन कैसा होगा, कोई कहाँ रहता है कोई कहाँ रहता है, आपके साथ उनका कैसा करे, इस रीति से उनका आपसे कनेक्शन हो रहा। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को हमेशा ही हर बात बहुत क्लियर करके समझाते हैं, परंतु हम लोग उसको समझ के फिर प्रैक्टिकल में लाने की आवश्यकता है। तो जितना जितना लाते हैं, शुरू शुरू में हम लोग जब भाषण करते थे ना, तो भाषण करने वाले भी हम ही होते थे, कार्ड बांटने वाले ही हम ही होते थे, जाके कार्ड बांटते थे, वो कहते थे किसका प्रवचन है, हमारा ही प्रवचन। अभी आपको सुन के हंसी आती है, पर हमें बहुत मजा आता था तभी, वो भी दिन बड़े प्यारे थे क्योंकि खुद ही प्रवचन करने का, खुद ही निमंत्रण देने का। तो अभी तो बाबा के इतने बच्चे हो गए, जितने बाबा के हाथ बढ़ते जाते हैं तो सेवाएं भी इतनी फर्टाइल होती गई और सब उसमें बढ़ाते गए हाथ। तो इसीलिए अपना और हमेशा ये ध्यान में रखो, कभी भी कोई सेवा मिले ना, आप ना नहीं बोलना, सेवा को ना बोलना, सेवा को रिफ्यूज करना, माना अपने ऊंचे भाग्य को रिफ्यूज कर। हम इतने वर्षों में, 50 वर्षों में हमने कभी भी किसी भी सेवा के लिए ना नहीं बोला, ना ना शब्द ही नहीं, बाबा ने सिखाया ही नहीं हमें ना, जो बोला जी बाबा जी दादी। तो उसके कारण क्या होता है, जब ये हमारे अंदर ये एक होती है ना भावना कि अरे ये सेवा, क्योंकि हमें मालूम है ये सेवा हमें क्या बनाती है। कभी कभी कोई ऐसा थोड़ी अवस्था ऐसी वैसी होती है ना जिसकी, वो क्या बोलेंगे, अरे हमने बहुत किया, अभी भले दूसरा जाके करे, अरे तुमने बहुत किया, तुम खुद को खुद ही सर्टिफिकेट दे रहे हो बहुत किया, हो गए खुद डिस्टर्ब हो गए अंदर में, पर बोलेंगे ऐसा, वो खेल तो देखते हैं हम बहुत, नहीं नहीं भले दूसरा करे ना, ये करे भले दूसरा करे, क्यों दूसरा करे, दूसरा भी करे तुम भी करो, ये तो सेवा का प्रसाद है, प्रसाद हमेशा बांट के खाया जाता है। अभी पहले कोई नहीं था तो हम ही करते थे, अभी बहुत करने वाले सब मिलजुल करके करो, तो जितना मिलजुल के करेंगे आप, एक काम अगर एक व्यक्ति करेगा तो उसको एक घंटा लगेगा, अगर 10 व्यक्ति करेंगे तो 5 मिनट में हो जाएगा, तो अच्छी बात है ना। तो इसीलिए जितना मिलकर के करेंगे हम, उतना जल्दी सफलता मिलेगी, उतना जल्दी विश्व कल्याण का काम पूरा होगा, उतना जल्दी अपने घर जाएंगे, उतना जल्दी नई दुनिया आएगी, नुकसान क्या हुआ हमारा। तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान में रखो कि हमें ये सेवा का प्रसाद सबको बांट करके खाना है, और जिसमें जो विशेषता है वो आप काम में लाओ, समझा? हरेक में कोई ना कोई कला है, अपनी कला को वो छुपा छुपा के रखते, छुपाते क्यों? आप ईश्वरीय कार्य में लगाओ, आप विशेष आत्मा बन जाए। देखो अपना विश्व किशोर भाई था, हम आपको बता रहे, विश्व किशोर भाई था अपना, जैसा मम्मा बाबा की राइट हैंड थी वैसा ही विश्व किशोर भाई बाबा का राइट हैंड, बहुत सारा यज्ञ का कारोबार वो ही संभालता था। उस समय तो शुरू में तो ना जगदीश भाई था, ना रमेश भाई था, ना ब्रिजमोहन भाई, ना निर्वैर भाई, कोई नहीं था, वो ही था। उसकी इतनी सारा ऐसा कारोबार संभालता था जो बात मत पूछ। उसको ये था, बाबा को कभी भी कोई बात मुझे कहना नहीं पड़े तो उसको कितनी की तकलीफ हो गई, पथरी हो गई। उस जमाने में तो पथरी की बीमारी माना बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती थी, कितनी की बीमारी बहुत बड़ी। अभी तो कोई बात नहीं, अभी तो देखो कितना साइंस इंप्रूव हो गया, उस समय थोड़े इतना था। तो इनको पथरी की बीमारी हो गई, इतनी तकलीफ होती थी इसको, डॉक्टरों ने बोला ऑपरेशन करने के बिगर नहीं होगा, ये बोले मेरे को ऑपरेशन नहीं कराना। अरे ऑपरेशन नहीं कराएगा तो तुम चल नहीं सकेगा, सारी सारी रात सो नहीं सकता था, इतनी इसकी हालत खराब। इसने कम से कम 6 मास बैठ करके सारा जितना भी यज्ञ कारोबार है ना, ऐसा इसने लिख करके ऐसे फाइल्स तैयार किए। इसने कहा मैं जब तक फाइल्स तैयार नहीं करूंगा तब तक मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं जाने के बाद किसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये क्या करके गया। एकदम सबके आगे ऐसा आईना होना चाहिए, कोई भी ये ड्यूटी संभाले वो बहुत सुचारू रीति से समझा, क्योंकि मैं ऑपरेशन के बाद वापस नहीं आने वाला, और सचमुच हुआ भी ऐसा ही। उसका ऑपरेशन बॉम्बे में हुआ, मुझे अच्छी तरह से याद है वो सारी सीन। हम लोग गए, मैं ब्रिजेंद्रा दादी के साथ गई थी, उसका ऑपरेशन अच्छा हो गया, सब हो गया, और दो दिन के बाद उसने अचानक शरीर छोड़ दिया। पर वो ऐसा सब तैयार करके गया, अभी हर एक कोई अपने दिल पर हाथ रखे कि हम कोई भी ड्यूटी लेते तो ऐसा यहां तक करते कि किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोई तो जानबूझ के उल्टा सुलटा करके रख देते, दूसरा भले मूंजता रहे बेचारा। ये सेवा तो करते हम सब, परंतु सेवा में भी प्रकार, सबकी दुआएं हमारे खाते में जमा हो गई, ये लक्ष्य रख करके पीछे अगर हम कार्य करते हैं ना, तो सदैव क्या होती है, दुआएं मिलती है, सफलता मिलती है। ठीक है, ओम शांति।
ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी, मिलन सिंधु में जब समा